दिनभर तारीख 10 अप्रैल दिन मंगलवार। मैं हूँ वात्सल्य राय। अगड़ी जातियों के संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर। बिहार के कुछ शहरों में हिंसा, आरक्षण के विरोध में लगे नारे।
माननीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को आरक्षण समर्थक जातिवादी बताकर अपमानित किया गया।
सीरिया के डूमा में कथित रासायनिक हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आमने सामने अमरीका और रूस।
Мы пригласили экспертов организации по запрещению химического оружия туда прибыть.
और बंटवारे के बाद भारत आकर बसे पश्तून हिंदुओं पर खास रिपोर्ट।
माँ बाप निकले, कुंडी लगाई, ताला लगाया, गाय थी हमारी, बछड़ा था, उसको कुंडी से बांध दिया, छोड़िए।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए अगड़ी जातियों के भारत बंद में बिहार में कई जगहों पर हिंसा हुई। खबरें हैं कि बिहार के आरा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर जिलों में सड़कों पर आगजनी और हिंसक झड़पें भी हुईं। वहीं किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए राजस्थान के जयपुर और मध्य प्रदेश के भोपाल में धारा 144 लगा दी गई। रूस ने कहा है कि वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक सीरिया में संदिग्ध क्लोरीन गैस हमले की जगह पर पहुंचकर जांच करें। वो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। रूस का कहना है कि सीरिया के दूमा में किसी भी तरह के रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उधर अमरीका ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसका मकसद संदिग्ध हमलावर की पहचान के लिए जांच बैठाना बताया गया था। रूस ने अमरीका के इस प्रस्ताव को अस्वीकार्य बताया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपना पेरू और कोलंबिया का दौरा रद्द कर दिया है। ट्रंप ने एक सख्त प्रतिक्रिया देने का वादा किया है और उनका ब्रिटेन और फ्रांस ने भी समर्थन किया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने इस संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाली हैं। उन्होंने कहा,
We're working with our allies and partners to assess what has happened on the ground in Syria.
हम अपने सहयोगियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया में आखिर हुआ क्या था। ये एक जघन्य रासायनिक हमला था, बिल्कुल ये एक गैर कानूनी रासायनिक हमला था। मैं इस बारे में राष्ट्रपति मैक्रों से बात कर चुकी हूँ और आज राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात करूंगी। ये थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेजा मे के शब्द। ब्रिटेन में नर्व एजेंट से किए गए हमले का शिकार हुए पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल की बेटी यूलिया स्क्रिपल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें और उनके पिता पर पिछले महीने ब्रिटेन में एक नर्व एजेंट के जरिए हमला किया गया था। सेलिसबरी स्थित अस्पताल की मेडिकल निदेशक ने कहा कि इलाज से पिता पुत्री की स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों का इलाज अभी जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो सर्गेई को भी सही समय पर अस्पताल से छुट्टी देंगे। बीबीसी को पता चला है कि सोमवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद यूलिया को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। लंदन स्थित रूसी दूतावास ने कहा है कि सर्गेई और यूलिया को गुप्त रूप से यदि कहीं बसाया जाता है तो रूस उसे अपहरण मानेगा। ब्रिटेन ने इस हमले का आरोप रूस पर लगाया था और जवाब में कई रूसी राजनयिकों को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया था। रूस ने भी ब्रिटिश राजनयिकों को जवाब में निष्कासित कर दिया था। लीड्स यूनिवर्सिटी में पर्यावरणीय विश्व विज्ञान के जानकार प्रोफेसर एलिस्टर हे बताते हैं कि इस तरह के नर्व एजेंट से शारीरिक से ज़्यादा मानसिक शक्तियाँ हो सकती हैं। उन्होंने कहा,
There will probably have to almost certainly be counseling. People who
मुझे लगता है कि उनकी काउंसलिंग ज़रूर होगी। नर्व एजेंट का शिकार होने वाले लोग कई बार मानसिक समस्याओं की शिकायत करते हैं। साफ है कि किसी ने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, तो यहाँ निपटने के लिए सभी तरह के मुद्दे हैं। ये थे पर्यावरणीय विश्व विज्ञान के जानकार प्रोफेसर एलिस्टर हे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रस्तावित औपचारिक मुलाकात की संभावनाओं को सार्वजनिक तौर पर पहली बार स्वीकार किया है। सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन के इस संबंध में पार्टी के अधिकारियों के साथ बैठक में बातचीत करने की खबर दी है। ट्रंप और किम की मुलाकात मई या जून में प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले इसी महीने के आखिर में दोनों कोरियाई देशों के बीच भी एक सम्मेलन होने वाला है। उत्तर कोरिया ने अमरीका से कहा है कि वो अपने परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के भविष्य पर भी चर्चा करना चाहता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। नारेबाजी, प्रदर्शन और आगजनी, ये सब कुछ दिखा 8 दिन पहले हुए बंद की प्रतिक्रिया में आज बुलाए गए भारत बंद के दौरान। 8 दिन पहले यानी 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने बंद बुलाया था। इन संगठनों का आरोप था कि SC ST प्रोटेक्शन एक्ट को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और बंद के जरिए इस पर विरोध जताया गया था। आज के बंद की अपील सोशल मीडिया के जरिए की गई और दावा किया गया कि इसका मकसद 2 अप्रैल को हुई हिंसा का विरोध है, लेकिन इसके पीछे कौन सा संगठन है ये तस्वीर साफ नहीं हुई। उत्तर भारत के राज्यों में आज बंद का मिलाजुला असर दिखा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण विरोधी नारे लगाए। इस दौरान कुछ शहरों से हिंसा की खबरें भी मिली। बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखा। सुनिए पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
भारत बंद का असर बिहार में सबसे ज्यादा आरा और गया में दिखा। आरा शहर के कलेक्टेरिएट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास धारा 144 लागू है। शहर के बस स्टैंड पर बंद समर्थकों और बंद विरोधियों के बीच जमकर रोड़ेबाजी हुई। बंद समर्थकों ने शहर में सुबह से ही रेल और यातायात सेवाओं को बाधित कर दिया था। NH84 आरा बक्सर मुख्य मार्ग पर बंद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा तो पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन को रोका भी। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर स्लैब रखकर भी रेल परिचालन को बाधित करने की कोशिश की गई। भोजपुर SP अवकाश कुमार ने BBC को बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। भोजपुर SP के मुताबिक बंद समर्थकों की NT पार्टी ने ही कथित तौर पर 6 राउंड फायरिंग की है। उन्होंने बताया,
स्थिति सामान्य है, ट्रैफिक भी सामान्य है। कुल 56 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। पुलिस में किसी के घायल होने की, चोट लगने की कोई सूचना नहीं है। दूसरी तरफ आम जनता की तरफ से भी अभी तक हमें, बंद समर्थक थे उनके एंटी पार्टी जो लोग थे उनकी तरफ से कथित रूप से की गई है।
इधर गया के मानपुर ब्लॉक में बंद समर्थकों की पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस दल के 2 लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक लड़की भी शामिल बताई जा रही है। ASP गया बलिराम चौधरी ने BBC से फोन पर बातचीत में कहा,
लॉ ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आपको अपडेट देने का समय नहीं है, सब नॉर्मल है यहाँ पर।
इसके अलावा केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ हाजीपुर के नोमा गांव के पास बदसलूकी की घटना सामने आई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मीडिया प्रभारी भोला शर्मा के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे हाजीपुर के पास सैकड़ों बंद समर्थकों ने उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी रोककर उनके साथ बदसलूकी की। उपेंद्र कुशवाहा मोतिहारी में आयोजित सत्याग्रह से स्वच्छता गृह कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। मीडिया प्रभारी भोला शर्मा ने BBC को बताया,
उपेंद्र कुशवाहा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, जिसमें इन्हें रोका गया। माननीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी को आरक्षण समर्थक जातिवादी बताकर अपमानित किया गया।
आरा और गया के अलावा बिहार के ज्यादातर जिलों में बंद का मिला जुला असर ही देखने को मिला। ज्यादातर जगहों पर बंद समर्थकों ने प्रदर्शन तो किए, लेकिन मोटे तौर पर वो शांतिपूर्ण रहा। सीटू तिवारी, BBC पटना।
2 अप्रैल के बंद के दौरान हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में आज क्या स्थिति रही, ये जानने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले भोपाल में स्थानीय पत्रकार शुरे नियाजी से बात की।
पिछले 2 अप्रैल को हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, खास तौर पर चंबल और जो ग्वालियर क्षेत्र है वहां पर हुई थी। तो इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर कल रात से मुरैना, भिंड और ग्वालियर के 5 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। तो हम देख रहे हैं कि वहां पे इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था और पुलिस ने काफी जबरदस्त किस्म के इंतजाम वहां पर किए थे। वहीं हमने भोपाल में भी देखा कि यहां पर भी पुलिस ने तकरीबन 5,000-6,000 पुलिस जो थी वो सड़कों पर थी। सीधी में जो है पुलिस को थोड़ा सा लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन वहां पर भी स्थिति नियंत्रण में है। सुबह के वक्त में ज्यादातर जो शहर है वहां पर दुकानें बंद रही। उसकी खास वजह यही थी कि लोगों को आशंका थी कि कहीं हिंसा ना हो जाए, इसलिए स्वेच्छा से जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकानें बंद रखी और लोगों ने भी अवॉइड किया भीड़ भरे इलाकों में जाने से। और ज्यादातर शहरों में हम देख रहे हैं जो बड़े शहर थे वहां पर धारा 144 लागू थी। जो गृह मंत्री उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये दावा किया है कि पूरे प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण रही और अभी तक कहीं से भी कोई किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
बंद की अपील किस संगठन ने की थी?
देखिए, बंद की अपील लोकल कुछ संगठन थे ग्वालियर के, उन्होंने की थी, लेकिन आज देखने में आया है कि वो भी सड़कों पर नहीं आए। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी कोई ऐसा संगठन सामने नहीं आया जिससे पुलिस का आमना सामना हुआ हो बंद करवाने के लिए।
ये थे शुरय नियाजी। बंद का असर राजस्थान में कितना रहा, ये जानने के लिए मैंने जयपुर में मौजूद पत्रकार नारायण बारेठ से बात की।
पिछले कटु अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राज्य भर में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए थे। राज्य के 836 पुलिस थानों में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और व्यापारिक संगठनों से पहले ही बात कर ली थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी बंद के आह्वान का दावा नहीं किया। ये संगठन कौन है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, न कोई चेहरा सामने आया न कोई नाम। केवल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणियां की थी और ये आह्वान किया था कि उस पिछले बंद के प्रतिक्रिया में इस बंद का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर जैसे शहर में काफी बाजार बंद थे, लेकिन फिर भी कुछ छिटपुट दुकानें खुली थी। जयपुर से बाहर अजमेर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में बंद का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। इस दौरान पुलिस के मुताबिक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो चिंता पैदा करती हो। कुल मिलाकर के किसी भी संगठन ने इसका आह्वान नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ कस्बों में ये प्रभावकारी ढंग से बंद आयोजित हुआ है। जयपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवा आज शाम तक बंद रखी गई है। कुछ संवेदनशील जो जिला मुख्यालय है वहां भी इंटरनेट की सेवाओं को निलंबित किया गया है ताकि कोई सोशल मीडिया का सहारा लेके बदमनी पैदा न करे।
ये थे नारायण बारेट। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी बंद का असर दिखा। इस खबर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप रुख कर सकते हैं bbchindi.com का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के चंपारण में थे। उन्होंने स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोदी ने सीधे तौर पर तो बंद को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन विपक्ष पर समाज को तोड़ने का आरोप जरूर लगाया। आप भी सुनिए।
सड़क से लेकर संसद तक सरकार के राम में नाकाम के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। साथियों, वैसे आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो जन मन को जोड़ने के लिए काम कर रही है, वही कुछ विरोधी जन जन को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। सीरिया में जहरीली गैस के कथित इस्तेमाल को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंटवारा साफ तौर पर दिखने लगा है। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि सीरियाई सरकारी फौज ने डूमा में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, वहीं रूस सीरिया का बचाव कर रहा है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुने फैसल मोहम्मद अली से।
अमेरिका रूस के बीच चल रहे आरोपों प्रत्यारोपों के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जांच एजेंसी को जहरीली गैस हमले वाली जगह पर बिना रोक टोक के जाने दिया जाए। गुटेरेस का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब रूस और अमरीका संयुक्त राष्ट्र में अपने अपने प्रस्ताव को लेकर जोर लगा रहे हैं। रूस इस मामले में हमले के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जाँचकर्ताओं का दल भेजने की बात कर रहा है, जिसके ये वो सुरक्षा परिषद के माध्यम से एक प्रस्ताव पास करवाने की बात कहता है। रूस का कहना है कि डूमा में किसी तरह की जहरीली गैस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा,
мы пригласили экспертов организации по запрещению химического оружия туда прибыть।
हमने OPCW के विशेषज्ञों को न्योता दिया है और इस बात की कोशिश करेंगे कि वो घटनास्थल पर जाएं। हम उन नतीजों पर यकीन नहीं कर सकते जो घटनास्थल से हजारों मील दूर बैठकर लिए जाते हैं। ये थे रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव के शब्द। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के प्रतिनिधि बशर जाफरी ने कहा कि अमेरिका और उसके मित्र देश सीरिया में आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं और वही लोग जहरीली गैस हमले के जिम्मेदार हैं।
إننا اليوم نوجه اتهاما مباشرا إلى واشنطن وباريس ولندن والرياض والدوحة وأنقرة.
هم آج سیدھے طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ، فرانس، برٹن، سعودی عرب، قطر اور ترکی IS، النصرة فرنٹ، جیش الاسلام اور ان سے جڑے درجنوں آتنکوادی سموہوں کا سمرتھن کر رہے ہیں جن کے پاس زہریلی گیس ہے۔ انہیں ان کا استعمال عام سیریائی ناگرکوں پر کرنے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہم ان پر ان نرسنہاروں کا آروپ لگاتے ہیں، وہ ثبوت مٹا رہے ہیں تاکہ وہ سیریا کی سرکار پر اس کے استعمال کا الزام لگا سکیں۔ وہ سیریا پر حملے کے لیے زمین تیار کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کا کام ہے جو سال 2003 میں برٹن اور امریکہ نے عراق کے خلاف کیا تھا۔ یہ تھے سیریا کے سنیکت راشٹر میں پرتنیدھی کے شبد۔ इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि जहरीली गैस हमले का जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि अमरीका इस मामले पर जल्द ही अपना जवाब देगा। ट्रंप का कहना था कि इस मामले में कई तरह के सैनिक कार्रवाई की गुंजाइश है।
We are getting clarity on that. Who was responsible for the weapons attack? We are getting some very good clarity, actually.
ये बात धीरे धीरे हमारे सामने साफ होती जा रही है कि जहरीली गैस के इस्तेमाल के लिए कौन जिम्मेदार है। हम दरअसल इस मामले में बहुत साफ तौर पर जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसके सर है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2011 से शुरू हुई जंग में सीरिया में लाखों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि उतने ही विस्थापित हुए हैं। इस जंग में रूस बशर अल असद के साथ है, जबकि ईरान भी बशर का समर्थन कर रहा है। अधिकतर मध्य पूर्व और पश्चिम के देश सीरिया की सरकार के विरोध में हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक विधायक समेत कुछ लोगों पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की की शिकायत की जांच विशेष जांच दल को सौंपी गई है। इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR में विधायक का नाम भी शामिल कर लिया गया है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र फिलहाल उन्नाव में है। मैंने अब से थोड़ी देर पहले समीर से बात की।
रविवार को जो ये घटना हुई, पीड़ित लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की और उसके अगले ही दिन सोमवार की सुबह लड़की के पिता जो कि पुलिस हिरासत में थे उनकी मौत हो गई। उसके बाद इस घटना ने तूल पकड़ लिया। विपक्षी दलों ने काफी इस पर हंगामा मचाया। खुद मुख्यमंत्री ने इसको लेकर काफी सख्ती दिखाई और लखनऊ रेंज के जो ADG है उनको वहां पे सीधे घटना स्थल पर भेजा और उनसे जानकारी लेने के लिए कहा। तो प्रशासन हरकत में आया, तुरंत जो FIR में दर्ज लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। चार लोगों को कल गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त जो विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी आज हुई। गिरफ्तारी की जानकारी दी उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने।
इस घटना में अतुल सिंह सेंगर जो विधायक जी के भाई हैं उनकी संलिप्तता पाई गई। उसी आधार पर और जो प्रमाण मिला है उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उनको उन्नाव से ही गिरफ्तार करके इसमें जो आवश्यक धाराएं हैं उसमें तरमीम करते हुए, क्योंकि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और जो इंजरीज थी उसके आधार पर ये केस तरमीम हो रहा है।
ये तो थे आनंद कुमार। इस मामले में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। पहले FIR में विधायक का नाम नहीं था, विधायक का नाम शामिल हो गया है। दूसरी तरफ जो पीड़ित के पिता की मौत हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इसको लेकर अधिकारियों का क्या कहना है?
इस बारे में मेरी उन्नाव के जिलाधिकारी रवि NG से बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है निश्चित रूप से उसमें कुछ खामियां हैं। वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उनके ऊपर हमला हुआ, मारपीट हुई है और उसके घाव लगे हुए थे। उनका ये कहना था कि निश्चित रूप से जो 3 अप्रैल की FIR दर्ज हुई थी जिसमें दोनों पक्षों की ओर से, जो पीड़ित पक्ष है और जो अभियुक्त पक्ष है, उनके बीच में मारपीट हुई थी, तो उसमें पीड़ित पक्ष की ओर से यानी लड़की के पिता की ओर से FIR नहीं दर्ज की गई थी या उसमें हीला हवाली की गई। और इन लोगों को, जबकि इन लोगों ने मार भी खाया था, ये पीटे गए थे, इनके खिलाफ कई कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया। DM का कहना था कि जो पीड़ित पक्ष की मांग थी कि कुछ और लोगों के नाम जोड़े जाएं, उनके नाम भी जोड़े गए हैं, कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उसके बाद ही विधायक कुलदीप सेंगर का नाम भी उस FIR में जोड़ा गया है।
रेप का जो मामला है ये पिछले साल का है। विधायक कुलदीप सेंगर का पक्ष आपके सामने आया है?
विधायक कुलदीप सेंगर से हमने बात करने की कोशिश की, नहीं बात हो पाई। एक दिन पहले उन्होंने खुद एक बयान दिया था और एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे राजनीतिक रूप से इसमें फंसाया जा रहा है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये मामला चूंकि उनके दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं तो उनके गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव से जुड़ा हुआ है।
जानकारी दे रहे थे समीर आत्मज मिश्र। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कल हुए बस हादसे में कुल 27 लोगों की मौत हुई, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं।
बहुत ही दुखद घटना है, पूरा प्रदेश तो सदमे में है ही है, पूरा देश इस घटना से सदमे में है। हमने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, ADM कांगड़ा सारे मामले की जांच करेंगे और उसके साथ साथ में जो परिवार में जो बच्चे नहीं रहे उनके लिए जो राहत के रूप में हमने 5-5 लाख रुपए देने की हमने बात, कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई होगी निश्चित रूप से कार्रवाई करें।
ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रहे थे अगर लापरवाही हुई है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब एक खास रिपोर्ट, अपनी जमीन, अपना घर, अपनों को छोड़कर किसी और मुल्क में जाना, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना आसान नहीं होता, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है अपनी पहचान छोड़ना। ऐसी ही कुछ कहानी है काकरी समुदाय के पश्तून हिंदुओं की, जिन्हें बंटवारे के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। आज 70 साल बाद भी इन पठान हिंदुओं को अपनी पहचान बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सुनिए पायल भोयन की रिपोर्ट।
तिरानवे साल की जसोदा बाबाई आज भी उस रात को याद कर सहम जाती हैं। बंटवारे ने उस रात ऐसी लकीर खींची कि जसोदा को अपना सब कुछ छोड़कर बलूचिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा।
सब देखते हैं कि ये क्या लगा रहा है, ये क्या है, मजाक बना लेते हैं। मैं तो परवाह नहीं करती, चुप करके चली जाती हूँ। कपड़े भी मजाक बनाता है, बातों में भी मजाक बनाता है। जब हमने कपड़े सारे छोड़ दिए, सब लोगों ने छोड़ दिया।
नई जिंदगी की तलाश में काकरी समुदाय के ये हिंदू पश्तून लोग भारत तो आ गए, लेकिन बंटवारे के बाद के माहौल में इन्हें भारत में मुसलमान समझा गया और इन पर शक किया गया, जिसका असर उनकी पश्तूनी जुबान पर भी पड़ा। बख्तर भी बताती हैं,
मुसलमान तो नहीं छोड़ता, मारे को तो बरगजो आता नहीं है, अब धीरे धीरे छोड़ दूंगा। बस तो भी बच्चे नहीं करते तो हम क्या करें, फिर क्या बोलूं।
इस समुदाय की महिलाएं अपने चेहरे पर बिंदुनुमा गोदने गुदवा कर रखती हैं। पश्तो में इन्हें श्रृंखलाई कहते हैं। चेहरे पर श्रृंखलाई बनवाने के रिवाज को इन हिंदू पश्तून महिलाओं ने बहुत पहले छोड़ दिया। तुलसीदास 10 साल की उम्र में हिंदुस्तान आए थे, अब वो 80 बरस के हो चुके हैं। शुरुआती दिनों की याद बहुत अच्छी नहीं है।
लोग कुछ थोड़ा सा हमसे नफरत उस वक्त इसलिए करते थे कि हमारा पहरावा जो था ना, वो वही मुसलमानों जैसा था, ये हमको हिंदू समझते नहीं थे।
इस समुदाय की औरतें अपने पारंपरिक काकरी कमीजों को पहनना बहुत पहले ही छोड़ चुकी हैं।
घाघरा तो छोड़ दिया, क्या करूं, बहुत दुख हो गए। जो अपना घर छोड़ दिया, अपना मकान छोड़ दिया है, अच्छा खाना पीना छोड़ दिया है, दुख तो होता है। ये क्या है पहना है, ये दिखता है।
काकरी कमीजों को इन्होंने संदूकों में बंद कर 70 सालों से छिपा कर रखा था। एक काकरी कमीज बनाने में 1-1 साल का वक्त लगता था। इनको असली चांदी के सिक्कों से सजाया जाता था। कमीजों पर लगे ये सिक्के रईसी की निशानी थे और इन्हीं सिक्कों में बंटवारे के बाद तंगी के दिनों में भी इनका साथ दिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद पर रहने वाले ये पश्तून हिंदू बंटवारे से पहले बलूचिस्तान के क्वेटा, लोरालाई, बोरी, मेक्तर इलाके में रहते थे। 1893 में ब्रिटिश राज ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंध रेखा खींच दी। इनका पूरा का पूरा पश्तून इलाका पाकिस्तान में चला गया। भारत आने के बाद ये हिंदू पश्तून राजस्थान के उनियारा, चित्तौड़गढ़ और पंजाब के राजपुरा जैसी जगहों पर आकर बस गए। चंद्रकला बरसों पहले बिताई उस रात को याद करती हैं।
हमारे माँ बाप निकले, कुंडी लगाई, ताला लगाया, गाय थी हमारी, बछड़ा था, उसको कुंडी से बांध दिया, छोड़े।
यशोदा बत्रा दूसरी पीढ़ी की हिंदू पश्तून है जिनका जन्म आजाद भारत में ही हुआ था। वो बताती हैं कि किस तरह उनकी माँ अपने घर को याद कर रोया करती थी।
मम्मी जब कढ़ाई करती थी तो बहुत छोटे छोटे थे, तो कढ़ाई करते करते मम्मी बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती थी, तो उसको गाते 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 मम्मी के आंसू बहते रहते थे, हमको पता नहीं होता था। मम्मी गाती रहती थी, फिर मैं मम्मी से पूछती थी मम्मी क्यों रो रहे, तो मम्मी बोलती थी नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ, रो नहीं रही।
श्रृंखलाएं सिर्फ दादी नानी के किस्सों और कहानियों में सिमट कर ना रह जाए, इसलिए इस समुदाय की तीसरी पीढ़ी से आने वाली शिल्पी श्रृंखलाएं नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं। ये कहानी दर्द की दास्तां भी है, जहां एक महिला अपनी पहचान का मजाक बनाए जाने से घर के देहरी से बाहर नहीं जाना चाहती। शिल्पी अपने बचपन के किस्से को याद करती हैं।
एक दिन मैंने अपनी नानी को पूछा था, मैं नीचे खेलने जा रही थी और मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ चलिए, तो वो एकदम से डर गई। शी इज लाइक नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों, कहती है ऐसा लगता है सब मेरे को देखता है, मेरे मुँह पे ये है ना, इसको लगता है ऐसे देखता है, मैं नहीं जाएगा।
अफगानिस्तान में हिंदू सदियों से रहते आए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्तो भाषा में विभाग में प्रमुख प्रोफेसर अब्दुल खालिद रशीद बताते हैं कि अफगानिस्तान से हिंदू पश्तो लोगों का रिश्ता करीब 2500 साल पुराना है।
ये लोग वो पुराने वाला पठान है वो 2028 साल से मतलब वो साइड में रहते थे और अभी तक उधर उसका असर इस इन लोगों पे है।
बख्तबरी और चंद्रकला आज भी पुराने दिनों को याद कर झूम उठती हैं। शायद ये अपना पारंपरिक नाच अट्टन कर रही हैं, जो इन्होंने 70 बरस पहले सीखा था। पायल भुयन, बीबीसी न्यूज, जयपुर।
उधर कॉमनवेल्थ खेलों में आज भारत के लिए हिना सिद्धू ने गोल्ड मेडल जीता। मैंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में मौजूद बीबीसी संवाददाता रेहान फजल से उनके प्रदर्शन के बारे में पूछा।
जी हाँ, 25 मीटर पिस्टल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता हिना सिद्धू ने। जीत वात्सल्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्वालिफाइंग मुकाबले में चौथे नंबर पर चल रही थी और उनकी उंगली में चोट लगी हुई थी, खासतौर पर उस उंगली में जिससे ट्रिगर दबाया जाता है। उनके साथ अन्नू सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई लेकिन वो पदक नहीं ले पाई। लेकिन शूटिंग में निराशा हुई 50 मीटर प्रोन राइफल में गगन नारंग और चैन सिंह दोनों पदक नहीं जीत पाए। सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत का रहा बॉक्सिंग में, जहां उसके 5 बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे। अमित ने स्कॉटलैंड के अकील अहमद को स्प्लिट वर्डिक्ट में हराया। नमन तवर और समोआ के बॉक्सर का कोई मुकाबला ही नहीं था। 6 फीट से ऊंचे नमन ने समोअन बॉक्सर पर मुक्त की एक तरह से झड़ी लगा दी। रेफरी ने वार्न भी किया फ्रैंक मोसेहा को कि सिर नीचा मत रखिए। उनकी आंख के ऊपर एक कट लगा जिससे खून बहने लगा और स्टैंडिंग काउंट हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से समोआ का बॉक्सर संभला। हम लोग तो मना रहे थे कि कब बाउट खत्म हो और कब समोअन बॉक्सर की तकलीफों का अंत हो। मुकाबले के बाद हमने नमन तंवर से बात की।
आपने तो बिल्कुल, ये तो केक वॉक थी आपके लिए।
हाँ जी, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, हर बॉक्सर का स्टाइल अलग होता है खेलने का। स्टार्टिंग के राउंड्स में उसको देखना पड़ा कैसे खेल रहा है कैसे नहीं। धीरे धीरे जैसे बाउट निकली ध्यान में आ गया उसका कैसा खेल रहा है कैसे नहीं, उसके बाद थर्ड राउंड में 100%।
इसके अलावा मनोज कुमार, हुसामुद्दीन मोहम्मद और सतीश कुमार भी अपने अपने मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि पदक अश्योर्ड है। सेमीफाइनल में अगर वो हारते भी हैं तब भी कांस्य पदक उनका कहीं नहीं गया।
जी रेहान साहब, ये तो आपने बॉक्सर्स का हाल बताया, हॉकी के मैदान में भारत का आज का प्रदर्शन कैसा रहा?
हॉकी में भारत ने मलेशिया को 2-1 से हरा दिया। पहला गोल भारत ने मारा, फिर मलेशिया ने बराबर कर लिया, लेकिन फिर एक गोल मारकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि ग्रुप बी को लीड कौन करेगा, क्योंकि अभी इंग्लैंड से उनका मुकाबला होना है और अगर इंग्लैंड को वो हरा देते हैं तो वो टॉप पर पहुंच जाएंगे और उनका सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला नहीं होगा। लेकिन अगर हारते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में मुकाबला होगा और उनके पार जाना बहुत मुश्किल होगा। उधर महिला हॉकी में भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है 1-0 से और वहां भी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए हैं। एथलेटिक्स में 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचने वाले अनास ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन 0.2 सेकंड के अंतर से वो कांस्य पदक चूक गए। लेकिन यहाँ ये तारीफ करनी होगी कि उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, यहाँ पर पदक नहीं जीत पाए। तो इस तरह भारत के 11 स्वर्ण पदक हो गए हैं और कुल पदकों की संख्या है 21।
चलते चलते मुख्य समाचार कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए अगड़ी जातियों के भारत बंद में बिहार में कई जगहों पर हिंसा हुई। खबरें हैं कि बिहार के आरा, भोजपुर, मुजफ्फर जिलों में सड़कों पर आगजनी और हिंसक झड़पें हुई। रूस ने कहा है कि वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक सीरिया में संदिग्ध क्लोरीन गैस हमले की जगह पर पहुंचकर जांच करें। वो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाने की कोशिश भी कर रहा है। रूस का कहना है कि सीरिया के दूमा में किसी भी तरह के रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्रिटेन के नर्व एजेंट से किए गए हमले का शिकार हुए पूर्व रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल की बेटी यूलिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान और कपिल देव सिंह। फेसबुक प्रसारण में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। वात्सल्य राय का नमस्कार।